एज़रा अध्याय सात, अध्याय सात पद एक। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्तशत्र के दिनों में, अध्याय सात पद छह से लेकर दस तक। यही एज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय, जिसे इसराइल के परमेश्वर ने दी थी, निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। और कितने इसराइली और याजक, लेविय, गवैये और द्वारपाल और नथिन के कुछ लोग अर्तशत्र राजा के सातवें वर्ष में यरूशलेम को ले गए, और वो राजा के सातवें वर्ष के पांचवें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन का वो बाबेल से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही, इस कारण पांचवें महीने के पहले दिन वो यरूशलेम को पहुंचा। क्योंकि एज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इसराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। एज़रा एक निपुण शास्त्री था। उसने परमेश्वर की खोज में अपना हृदय लगाया, और अर्थशत्र ने उसे दूसरे लोगों के साथ, जो करीब 1754 थे, उनके बच्चों, स्त्रियों और जो कुछ उनका था, उसके साथ जाने की अनुमति दी। ये दूसरा छोटा दल था जो एज़रा के साथ यरूशलेम को लौटा, और ये लगभग 80 वर्ष बाद की घटना है। अब एज़रा दृश्य में आता है। यहां स्पष्ट है कि उसे राजा का अनुग्रह प्राप्त था। तब उसको आज्ञा मिली कि वो वापस जाए और लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार सिखाएं और शिक्षा दें। एक मशहूर कहावत एज़रा की, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। अर्थशत्र ने एज़रा को ये आज्ञा दी, अध्याय सात पद बारह से लेकर तेईस तक। एज़रा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अर्थशत्र महाराजाधिराज की ओर से इत्यादि, मैं ये आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इसराइली और उनके याजक और लेविय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे, वे तेरे साथ जाने पाए। तू तो राजा और उसके संतों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा बूझ ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इसराइल के परमेश्वर का, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना कुछ बाबेल प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाए। इस कारण तो उस रुपए से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने और उनके योग्य अन्न बलि और अर्ध की वस्तुएं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है, और जो चांदी सोना बचा रहे उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना, और तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना, और इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वो राज खजाने में से दे देना। मैं अर्थशत्र राजा ये आज्ञा देता हूं कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एज़रा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे, वो फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 किकार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाकमधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? राजा ने ये आज्ञा क्यों दी थी? क्योंकि एज्रा ने राजा के पास जाकर कहा था, परमेश्वर का हाथ उन सब पर जो उसे ढूंढते हैं बना रहता है, परंतु यदि वो उसे भूल जाए तो परमेश्वर का क्रोध और दंड आता है। इसलिए राजा ने कहा, मेरे ऊपर उसका क्रोध क्यों भड़के, जाकर सारे काम करो। और ये आज्ञा भी निकाली कि कोई शास्त्री याजक और जो परमेश्वर के भवन में कार्य कर रहे हैं उन पर कर ना लगाया जाए, उन पर कोई कर जैसे मार कर या सीमा कर ना लगाया जाए। अध्याय 7 पद 25 और 26। फिर हे एज्रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे, और जो जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो, और जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राणदंड, चाहे देश निकालना, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। तब एज्रा ने कहा, अध्याय 7 पद 27 और 28, धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यहोवा की यरूशलेम के भवन को सवारे और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। एज्रा ने कहा, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इसराइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। निस्संदेह एज्रा के लिए अर्थशास्त्र के मन में बड़ी दया थी और उसने ये अद्भुत आज्ञा निकाली थी कि महानद के उस पार रहने वाले एज्रा को पैसा दें और साथ ही स्वीकृति दी कि वो लोगों को स्वे इच्छा दान स्वीकार कर सके। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि थोड़े ही थे जो एज्रा के साथ गए, बहुत लोग लौट सकते थे, परंतु सिर्फ 1754 लोग ही लौटे। इसका कारण ये था कि यहूदी वहां रहकर समृद्ध हो गए थे, उन्होंने व्यापार आरंभ कर दिया था, जबकि गुलामी से पहले वे किसान थे, परंतु यहां वे व्यापार करते थे, वे समृद्ध और अमीर हो गए थे, इसलिए उस अशुद्ध देश में जाना नहीं चाहते थे। अभी भी इसराइल के देश में बहुत से कम कष्टदायक थे, जैसे निर्माण करना आदि। यहां वे फारस में उस बड़े और महान राजा के अधीन समृद्ध हो गए थे और यहां उनके पास बहुत कुछ था, इसलिए लौट जाने के इच्छुक नहीं थे। सबको स्वतंत्रता थी कि अपनी इच्छा से लौटना चाहते हैं तो लौट जाएं, लेकिन केवल 1754 ने लौटना पसंद किया, बाकी वहीं बस गए। वे फारस और वहां की समृद्धि को छोड़कर उजड़ी हुई भूमि पर निर्माण और पुनर्वास के कठिन कार्य में पड़ना नहीं चाहते थे।